कर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, ये संगम का स्वर्णिम युग है। शिव पिता फिर से आया विकराल विनाश खड़ा आगे।
अब हम सब का शिव पिता ने बतलाया है।
शिव पिता को अब याद करो।
ओम शांति। मधुबन भूमि की यही विशेषता है कि एक स्थान पर हम सभी का लाभ ले सकते हैं। हम अपने स्थान पर भट्टी करते एक या दो बहनों को इनवाइट कर सकते हैं, परंतु यहाँ हमें रोज कितनी न बाबा की अनुभवी मूर्त ज्ञान गंगाओं के अनुभव और वरदानी बोल से बाबा झोली भर रहे हैं। आज हमारे बीच में प्रभा दीदी जी है। आप इतनी महान आत्मा है कि श्री कृष्ण की जन्म भूमि में ही आपको बाबा ने ये अलौकिक जन्म दिया है। समझ गए होंगे कौन सी है श्री कृष्ण की जन्म भूमि? मथुरा। देखो कितना महान सौभाग्य है। आदि और अंत का कितना सुंदर ये कनेक्शन है। आदि जन्म भी दीदी आप वहीं होंगे, इसीलिए अंत जन्म में भी आपको बाबा ने वहां ही ढूंढा है। और 50 वर्ष से लगातार बाबा के इस ईश्वरीय यज्ञ में आप हर प्रकार की सेवा करते हैं। उसमें भी विशेष बात, मुंबई की मायावी नगरी में दादी जी की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभा दीदी जी ने 5 साल मुंबई में दादी के साथ रह करके सेवा की है। और वर्तमान समय गुजरात में भरूच सेवा केंद्र, जो आप सब जानते हैं, ट्रेन से आते जाते दीदी हम भरूच को याद करते हैं। यहाँ पर बाबा का सुंदर बना हुआ बहुत अच्छा भवन है, हम भी एक बार गए थे, बहुत सुंदर सेवाएं चलती है। और दीदी जी के मार्गदर्शन में आप भरूच सब जोन संभालते हैं। अभी ज्ञान सरोवर में निर्मला दीदी जी सेवा पर गए हैं, तो आप वहां पर ज्ञान सरोवर के भी सेवाएं संभाल रहे हैं। मधुबन में भी बहुत सालों तक जब बाहर से भाई बहने आते थे, मुझे याद है कि बाहर जैसे आज हमें रास्ते का भोजन मिलता है, तो सभी भाई बहनों को, जाने वालों को अपने हाथों से दीदी बड़े प्यार से भोजन देते थे, प्यार से पूछते थे और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, तो जो कोई कहे समय पर भी तो भी दीदी उनको देते थे। तो मधुबन में भी आप अपनी सेवा संभालते हुए सदैव सहयोग देते रहते हैं। तो आज हम धारणा युक्त क्लास सुनेंगे आदरणीय प्रभा दीदी जी के द्वारा। आपका दीदी मुंबई साइन कनेक्शन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। वन्ना बहन ने सुनाया कि हमने जमुना किनारे अलौकिक जन्म लिया और नर्मदा किनारे सेवा कर रहे हैं। बाबा ने हम सबको कहा है कि हमारी सतयुगी नगरी में जमुना गंगा किनारे ही महल होंगे, ऐसे ना? और बाबा ने हम सबको सेवा के लिए हमें ऐसा स्थान बाबा ने दे दिया है। मैं क्लास से पहले आप सबको निमंत्रण दे देती हूँ कि आप सभी भी जरूर जरूर हमारे नर्मदा किनारे अनुभूति धाम में, नाम है अनुभूति धाम में आप जरूर अवश्य पधारना। बहुत ही बाबा ने सुंदर स्थान नदी के किनारे दिया है, जहाँ बहुत अलौकिक वातावरण है। जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा के स्थान जो है, सच्चे सच्चे तीर्थ तो बाबा के स्थान ही है, है ना? भक्ति के अंदर तो अलग अलग मंदिर बनाते हैं, लेकिन सच्चे सच्चे तीर्थ बाबा के जो भी स्थान है, वो स्थान सच्चे सच्चे तीर्थ है। बाबा का जो भी स्थान है, चाहे छोटे शहर में है, चाहे बड़े शहर में है, चाहे गांव में है, कहां भी है, लेकिन हर एक स्थान की विशेषता होती है। आप कहेंगे कि नहीं, अनुभूति धाम की विशेषता है, बॉम्बे में ऐसा स्थान नहीं है। नहीं, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता होती है, और उस स्थान पर रहने वालों की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। बाबा ने भी हर आत्मा को चुना है, तो किस आधार से चुना है? है? हर आत्मा की विशेषता को देख करके भगवान ने चुना है। कहते ना, चुन चुन कर जग के कांटों को फूलों की माला बनाई। हाँ, तो बाबा ने जो हम जग के कांटे थे, हाँ, और फूल भी कांटों में ही होते हैं, हाँ, कांटों से अलग नहीं होते हैं, कांटों में ही होते हैं, कमल भी कीचड़ में ही होता है, हाँ, तो बाबा ने भी हम सबको कांटों में से फूल चुन लिए, है ना? और चुन चुन करके बाबा ने कितनी सुंदर माला बनाई है। इस सुंदरता को जब हम सोचते हैं, देखो कवि होता है ना, वो क्या करता है, कविता कैसे लिखता है? कवि जब कविता लिखता है तो कोई सुंदरता देखता है, कोई विशेषता देखता है, और उसके आधार पर उसकी कविता लिखी जाती है, है ना? तो हम सब आत्माएं भी इतनी विशेष हैं, जो भगवान ने भी हम सब आत्माओं की विशेषता को देखकर इतना बड़ा सुंदर बाबा ने ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की जब हम सुंदरता को देखते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है? एक एक विशेषताएं, एक एक महानताएं दिखाई देती है कि बाबा ने कैसे हम सब बच्चों को क्या से क्या बना दिया है। सोचते हम क्या थे और बाबा ने हम सबको क्या बना दिया है। अगर हम इस बात को सोचते हैं, है, कि क्या थे और अब हम क्या बन गए हैं और बाबा क्या बना रहा है, रोज बाबा मुरली में हम सबको कहते हैं, बच्चे मैं तुमको देवता बनाने आया, कहते ना बाबा, और हम बच्चे भी बड़े खुशी से हैं मुरली में ये शब्द सुनते हैं कि भई हम तो देवता बनने वाले हैं, तो खुशी तो होती है, होती है, नहीं होती है, बहुत खुशी होती है, हम क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले। और किसी को सुनाते भी हैं तो ये सुनाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण अर्थात देवता बनने का लक्ष्य। तो जब हम ये सोचते हैं, सुनते हैं बाबा कहता है, हाँ, कि भाई देवता बनने वाले हैं, तो हम कितने देवता बने हैं, है? अभी अभी हम सब गुजरात की मुख्य बहनें गुलजार दादी से मिलने गए थे, रक्षाबंधन के पहले दादी से मुलाकात करने के लिए हम सब अहमदाबाद गए थे। दादी सबसे बड़े प्यार से मिली, इतना प्यार से दादी मिली और सब बहने हम बैठी थी, तो दादी ने हम सबसे एक प्रश्न पूछा है? कौन सा प्रश्न? पहली क्लास का है? क्या प्रश्न पूछा कि तुम सब अपने को भाग्यशाली समझती हो है? तो हम सब क्या उत्तर देंगे? समझते हैं ना, भाग्यशाली हम हैं, ये हम समझते हैं। तो हम सब ने दादी को कहा, दादी हम भाग्यशाली हैं। तो अच्छा, कौन कौन सा भाग्य है, क्या भाग्य समझती हो है? तो हर एक ने अपनी अपनी बातें सुनाई दादी को। तो दादी ने सुना, बड़े प्यार से सुना, हम सुनती रहे, इतनी साक्षी हो कि दादी सुनती रही, वो सीन तो देखने वाली थी। फिर दादी ने कहा, अच्छा तुम सब भाग्यशाली हो। हाँ, कितने, तीन या चार बार बोला होगा, तुम सब भाग्यशाली हो, तुम सब भाग्यशाली हो। ऐसे हम सब बैठे थे, तो हमने कहा हाँ दादी। तो जैसे दादी ऐसे बोल रही थी जैसे कि कोई अंदर में डाउट है, पूछती थी है, हो तो सबने कहा हाँ दादी है। तो दादी ने कहा, अच्छा सब जब भाग्यशाली हो तो वो भाग्य अब आपका दिखना चाहिए ना? आप सब भाग्यशाली हो तो आपका भाग्य दिखता है हा? कहां भी आप जाते हो तो आपका वो भाग्य दिखना चाहिए। जैसे दादी ने कहा, देखो हीरा है, वो कहां भी होगा, चमकेगा, है ना? तो आप भाग्यशाली आत्माएं हो, आप विशेष आत्माएं हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो आप कहां भी बैठे हैं लेकिन उसके अंदर अब आप विशेष दिखने चाहिए ना? दादी का कहने का भावार्थ क्या था कि जो हम अपने को समझते हम भाग्यशाली हैं, वो भाग्यशाली अब जैसे खुद को हम समझते हैं भाग्यशाली, वैसे औरों को भी ये फील होना चाहिए कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं, दिखना चाहिए। जैसे आज हम प्रैक्टिकल में हम देखते हैं हमारी दादियां हैं, क्या दिखती हैं सबके बीच में, हम कितने ब्रह्मा कुमारी बहने हैं, भाई बहने हैं, सब हैं हा? लेकिन सबके बीच में दादियां क्या दिखती हैं? विशेष दिखती है। क्या दिखती है? उनका बोलना, उनका रहन सहन, रूहानियत, प्रसन्नता, खुशी, बोल है दादी के ना, एकदम जैसे कि हम सबसे न्यारे लगते हैं है? और वो न्यारापन हम सबको खींचता है ना? सबको क्या आकर्षण करता है? न्यारापन। बाबा का क्या खींचता था? न्यारापन। देखो बाबा जब आते हैं दादी में तो क्या खींचता है? वो अलौकिकता, वो रूहानी नशा, वो खुशी है, वो रोहन दिल बाबा के हमको जैसे कि खींचते हैं, बाबा की दृष्टि हमको खींच लेती है। तो जैसे दादियों का विशेष दिखता है, ऐसे दादियों का आप सभी विशेष आत्माएं हो है? हम सभी विशेष है ना, कोई छोटे नहीं है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 2 साल, 2 साल भी कम थोड़ी होते हैं। तो कहां इतने आप सभी हो, तो अभी आप सभी को विशेष सेवा का ये कार्य करना है, है? हम सभी ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना लेते हैं, क्लास भी करा लेते हैं, भाषण भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन सेवा में हम सब दुनिया को अब न्यारे लगने चाहिए। जैसे हम सब कहते हैं ना, भाई हम किसके बच्चे हैं, हमें नशा तो रहता है ना, भगवान के बच्चे, भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे और दुनिया दोनों में क्या दिखाई देना चाहिए? अंतर दिखाना चाहिए है? बाबा कई बार कहते हैं ना, भट्टी में आए हो तो भट्टी में क्या होता है, भट्टी में क्या करते, तपते हैं ना है? कोई भी चीज भट्टी में डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है ना? तो भट्टी में आए माना परिवर्तन है? तो हम भगवान के बच्चे हैं, सिर्फ कहना नहीं है लेकिन भगवान के बच्चे अब हम दिखाई देने चाहिए। बाबा कई बार मुरली में हम सबको कह देते, बच्चे ये हरेक एक एक बाबा का चेतन म्यूजियम है। हम कहते ना देवता बनने वाले हैं, तो हम सब देवता बनने वाले हैं, हम सब क्या हैं? देवताएं हैं। तो हमारी एक्टिविटी अब उस बोध हमारे कर्म से हमारी दिखाई देनी चाहिए। ये हमारी अब सेवा है। बाबा कई बार कहते हैं ना, मुख से सेवा कितनी करेंगे, कितनों को ज्ञान सुनाएंगे, सुना सकेंगे? देखो आज कितने साल से हम ज्ञान सुनाते आ रहे हैं, सुनाते जा रहे, लेकिन फिर भी सेवा पूरी नहीं हुई है। हुई है? अब बॉम्बे में कितने सालों से सेंटर है, सबसे पहले से जब साकार बाबा थे, बाबा ने सबसे पहले सेवा शुरू की, तो भी अभी पूरी नहीं हुई। कितने एरिया बाकी रह गए, कितनी आत्माएं बाकी रह गई है? तो वो क्या है कि हम सब मुख से सेवा करते हैं। और अभी हमारी दादियां और बाबा कहता है मुख नहीं, लेकिन क्या आप मनसा भी प्रैक्टिकल दिखाई देनी चाहिए, बोल से, चाल से, एक्टिविटी से दिखाई देनी चाहिए। वो रूहानी नशा, वो रूहानी खुशी हमारी झलकनी चाहिए। आज खुशी कहाँ होती है? देखो चेहरे कैसे रहते हैं, भगवान के बच्चों के चेहरे कैसे होंगे, उसका नशा कैसा होगा? देखो साधारण पोस्ट वाला भी व्यक्ति होता है ना, उसको अपने पोस्ट का कितना नशा होता है, चलता है नहीं है? अच्छा खुद नहीं होगा, लेकिन कोई इसका संबंधी भी होगा ना, तो भी नशा रहता है। हमारा फलाना है, हमारे तो सारे संबंधी देवता बनने वाले हैं, सारे भगवान के बच्चे है ना, और हम भी खुद भगवान के बच्चे, हम खुद भी देवता बनने वाले हैं, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो वो नशा, वो खुशी है? बाबा कहता भी हम सबके जीवन से दिखनी चाहिए। तो खुशी क्यों नहीं दिखती है? उसका भी कारण है ना, खुशी क्यों नहीं दिखती है? कई कहते हैं ना योग कैसे करें। अभी मेरे को प्रश्न पूछा, बोला योग कैसे करें? अब अगर हम पूछे तो हमारा योग क्या है? बाबा मुरली में रोज कहता है नहीं, बच्चे योग योग नहीं कहो, याद याद कहो, है ना? तो हमारा योग है या याद है? याद है। जो कहते हैं योग है उनका योग नहीं लगेगा, जो कहते हैं याद है उनका योग लगेगा। है याद माना, याद किसकी आती है? याद किसकी आती है? जिससे प्यार होता है, जिससे प्राप्ति होती है, है ना? तो हम बाबा के बने हैं, है? और बाबा के बने हम सबको निश्चय, हम सबको विश्वास है, और हम सबको इस बात की खुशी है कि हम भगवान के बच्चे ब्राह्मण हैं, है? भगवान के बच्चे हैं, ये हमें खुशी है। जब भगवान के बच्चे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को याद करना मुश्किल है? है? मुश्किल है? नहीं है ना? मुश्किल क्यों होता है? ये भूल जाते हैं कि मैं बच्चा हूं ना? ये भूल जाते हैं कि मैं बच्चा हूं, इसीलिए याद नहीं रहती है। और सदैव ये याद रहे कि मैं बच्चा हूं। आज की आप सबने मुरली सुनी ना, तो आज बाबा ने बार बार मुरली में क्या कहा है? आत्मा। बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को मंत्र बाबा ने दिए, मन मना भव का मंत्र दिया। फिर बाबा ने कहा मन मना भव क्या है, उसका बाबा ने अर्थ समझाया। मन मना भव क्या है? मन मना भव माना मैं आत्मा, परमात्मा की संतान। फर्स्ट लेसन बाबा ने हम सबको, फर्स्ट लेसन कौन सा सिखाया? हम आत्मा हैं और हम आत्मा परमात्मा की संतान है। तो ये हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमें योग लगाना पड़ता है, है ना? अगर हमें ये स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, हमारा शिव बाबा कौन है, तो कभी योग लगाना पड़ेगा। है देखो घर में भी हम स्मृति रहती है, हमारा फलाना फादर है, हमारे माता पिता वो है, हमारे भाई बहन वो है, वहां रहते हैं, वहां करते, सब याद रहता है ना, रहता है या नहीं रहता। किसी ने पूछा परम धाम में योग लगाएं या योग लगाएं, भाई कहां योग लगाएं, परम धाम, परम धाम हमारा घर है। ये बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाई है कि परम धाम हमारा घर है, है? और हम सब किसके बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे, तो शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चों के साथ शिव बाबा तो सदा साथ है, है? तो साथ परम धाम में होगा या यहां होगा, परम धाम में तो जाएंगे, है? और परम धाम में जाकर के वहां बिंदु स्वरूप में बैठ जाएंगे, तो बिंदु स्वरूप में बैठ के योग का क्या अनुभव होगा, होगा अनुभव कहाँ होगा, या जब बाबा मेरे साथ, हम कहां भी बैठे, चाहे जंगल में बैठे, चाहे शहर में बैठे, चाहे घर में बैठे, चाहे ऑफिस में बैठे, कहां भी बैठे, बाबा मेरे साथ है तो मेरा योग है। उस साथी को हम सदैव साथ रखे ना, तो वो हमारा योग है। तो विशेष हम कई बार इसमें क्या हो जाता है, कई बार इन बातों में ही हम चले जाते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बोलते हैं कैसे योग लगाएं, कौन सी स्मृति लाएं, बिंदु को याद करें या बड़े स्वरूप को याद करें या किसको याद करें, घर में याद करें कि परम धाम में याद करें कि सेंटर पर याद करें कि गुलजार दादी में याद करें कि किसमें याद करें। वैश्य बाबा तो एक ही है ना, वो मेरा साथी है, जाजा झंडटों में जाने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूं और बाबा की हूं, बस इतना ही हमारा योग है, और कोई बुद्धि में ना आए यही हमारा योग है। कई बार हमारी माताएं होती है ना, वो कई बार हमसे पूछती हैं, कहती दीदी मेरे को बाबा से बात करना नहीं आता, मैं बाबा से क्या बात करूं, है ना, कई बार ऐसे संकल्प चलते हैं ना कि हम बाबा से क्या बातें करें, क्या करें बाबा से बातें, कितनी बातें करें, हमारी बातें पूरी हो जाती है, योग लगाते लगाते भाई आधा घंटा करेंगे फिर करेंगे, कितनी बातें करें बाबा से, है? तो मैं उनको एक ही बात सुनाती हूँ, तुम कोई बात नहीं करो, है? सिर्फ जाके बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा के सामने बैठ जाना, आप नहीं बात करना, आप बाबा के सामने बैठो, बाबा आपसे बात करेगा, करेगा, ये अनुभव है ना सबको, जिसको हाथ खड़ा करो, देखो, और हम बातें करेंगे ना तो पूरी हो जाएंगी, और बाबा हमसे बात करेगा तो पूरी ही नहीं होगी, होगी, देखो बाबा कितनी मुरली चलाता है, हैं? हम एक घंटा भाषण करेंगे, आधा घंटा भाषण कर लेंगे, और बाबा हैं? बाबा कितने सालों से भाषण करता है, कितनी मुरली चलाता है, कितनी सुनाता है, कभी पूरी होती है? देखो आप सबने तो अभी, आप जो पुराने होंगे उन्होंने भी तो देखा होगा कि बाबा अव्यक्त बाप दादा कैसे मिलते थे, मुरली चलाते थे, सारी सारी रात बैठकर एक एक आत्मा को वरदान देते थे, अलग अलग वरदान, है कहां से वो आता था, वो तो कहते हैं ना मैं ज्ञान का सागर हूं, तो वो तो देता जाता है, हम बाबा से ले, बस बाबा के सामने बैठ जाओ, सामने बैठेंगे तो बाबा देता जाएगा, देता जाएगा। हाँ इतनी तकलीफ जरूर लेनी पड़ेगी कि बाबा के सामने जाकर बैठना है, तो बाबा को एक तो साथ में रखो, और बाबा से बातें करनी है तो बाबा के सामने जाकर बैठ जाओ। ये बाबा का चित्र नहीं है, लेकिन ये बाबा क्या है, स्वयं चैतन्य है, ये बोलता है बाबा, हमसे बात करता है, कोई भी दिल की बात होती है, आप सभी जाएंगे बाबा के आगे तो क्या होता है, बाबा कैसे प्यार से बात करता है, करता है कि नहीं करता है। कई बार आप सब ने ये भी अनुभव किया होगा कि बाबा के सामने हम जाके बैठते हैं तो जैसी हमारी स्थिति होती है वैसा बाबा का चित्र दिखाई देता है, होता है नहीं होता है? अगर हमारे ऐसे कोई अगर गलती हुई होती है ना तो हम बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा का चित्र हमको बहुत फेस ऑफिशियल लगता है ना, ऑफिशियल लगता है। चित्र तो वही है ना, चित्र में तो कोई अंतर नहीं है ना, कोई पेंटर ने आके चेंज तो नहीं किया है ना, वही है। लेकिन बाबा के सामने हम बैठते हैं ये हमें बाबा महसूसता कराता है, है? देखो भक्ति में भक्त लोग मूर्तियों से प्राप्ति करते थे, हम तो हमारा बाबा अब हमारे सामने चेतन में बैठा है। तो बाबा से हमें अभी क्या करनी है, प्राप्ति करनी है। तो बाबा के सामने हम बैठेंगे, बाबा से बातें करेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक हमसे बातें करेगा और बाबा से ही बातें करेगा और बातें भी उससे की जाती है जिससे प्यार होता है। प्यार वाले के सिवाय दूसरे से बातें होंगी नहीं होंगी? हाँ, कोई दुश्मनी होगी तो थोड़ा उसके आगे भी बोल देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिल की बातें किससे करते हैं? प्यार वाले से, है? तो बाबा से ही हम दिल की बातें करते, इसलिए उसको दिलवर कहा है। दिल लेने वाला दिलवर, कैसे दिल लेता है बाबा? वो हम बच्चों की बातें सुनता है, हम बाबा से बातें करते हैं। देखो दादियां कैसे बाबा से बात करती हैं, है? तो ऐसे ही हम बाबा से सदैव बाबा को अपने साथ रखें और बाबा से सदैव बातें करें, यही हमारा वास्तविक योग है। बाकी ऐसे नहीं हम ऐसे बैठ गए, आसन लगा दिया और बुद्धि योग परम धाम लगा दिया, उसमें वो टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन बाबा के पास प्यार से बैठो, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा पिता है, उससे हमारे सर्व संबंध हैं, तो बाबा हमें सर्व प्रकार की प्राप्तियां कराता है और ये प्राप्ति लेने का भी हम सबको सौभाग्य मिला है। जो सौभाग्य और कोई आत्माओं को नहीं है, हमारे पास ही सौभाग्य। सदैव अपने भाग्य का सिमरन करो, जितना हम भाग्य का सिमरन करेंगे ना, जितना हम प्राप्तियों का सिमरन करेंगे उतनी हमको खुशी होगी। हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, मुरली सुन ली, क्लास कर लिया, योग लगा लिया, लेकिन प्राप्ति आती है? सवेरे से बाबा कहते सुनाते हैं ना कि भाई अमृत वेले कोई भाग्य को सिमरन करो, कोई स्वमान को सिमरन करो, कोई वरदान को सिमरन करो। अगर वरदान याद आया, स्वमान याद आया, भाग्य याद आया, अगले दिन बाबा ने मुझे क्या क्या दिया वो ही याद कर लो तो सारा दिन क्या चलेगा, खुशी में चलेगा। ऐसा कोई दिन नहीं है जो बाबा हमें न देता हो। तो पिछला दिन याद करेंगे हैं तो सदैव क्या, उस समय सारे दिन खुशी में जाएगा। आज बाबा ने मुझे इतना दिया था, दुकानदार होता है ना, वो अपने पिछले दिन की कमाई देखता है, तब दूसरे दिन उसको उमंग उत्साह आता है कमाई करने का। अगर देखे नहीं तो कमाई करने का उमंग उत्साह आएगा नहीं आएगा ना? तो हमें भी बाबा ने हमें पिछले क्या दिया है अगर हमें ये स्मृति में है तो हमें दूसरे दिन का पुरुषार्थ करने की क्या रहेंगे, खुशी रहेगी, उमंग रहेगा। उमंग उत्साह जो कम हो जाता है ना, उसका मेन कारण ये होता है क्या कि हम अपनी प्राप्ति का सिमरन नहीं करते। तो मैंने कहा ना, दादी ने हमको बार बार पूछा, इतना पूछा, अब हम तो बड़ी बहने तो हमको पूछ रही है, है? भाई हमें तो याद ही है ना, लेकिन नहीं, वो इतनी स्मृति नहीं है ना। तभी तो दादी ने कहा, नहीं वो आप लोग हीरे दिखते हो, बीच में जाते हो तो हीरे दिखते हो, हैं? तो हम सभी क्या है, हीरे हैं। बाबा ने हम सबको कौड़ी से हीरा बनाया है, तो अब हम हीरे क्या होने चाहिए, चमकने चाहिए। पॉलिश कब तक होगी, है? कितने साल पॉलिश कराएंगे, है? तो अभी क्या करने चाहिए, वो हीरे चमकने चाहिए। बाबा रोज हम सब की पॉलिश करता है, कितनी अच्छी पॉलिश करता है, करता है नहीं करता है, है? इतनी अच्छी बाबा ने पॉलिश कर इतनी हमें पालना दी है, और पालना देने के लिए सिर्फ स्वयं बाबा ही नहीं, लेकिन बाबा ने हम सबको बहुत बड़ा दैवी परिवार भी दिया है। दिया या नहीं दिया? इतना बड़ा दैवी परिवार किसका है? ईश्वरी परिवार किसका है? है नहीं है। बाबा ने हम सबको ये एक अलौकिक ईश्वरीय और दैवी परिवार दिया है, जो हमें एक दूसरे के उमंग उत्साह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा हम सबको बढ़ाने के लिए आया है, हम सबको प्राप्ति कराने के लिए आया है। उन प्राप्तियों को स्मृति में रख कर के अगर हम चलते हैं तो ये जीवन बहुत क्या बन जाता है, हाँ, स्मूथ बन जाता है। बाबा ने देखो जीवन बहुत स्मूथ बनाया है, हाँ? ज्ञान हमें बहुत बाबा ने सहज दिया है, कहते हैं ना सहज ज्ञान और सहज योग, हाँ? ज्ञान भी सहज है तो योग भी सहज है, लेकिन हम सब ने क्या किया, सहज सहज करके सहज कर दिया है। सुना? सहज का मतलब क्या होते हैं? सहज है ना, चल रहा है, हो रहा है, अटेंशन कम कर दिया है। जितना अटेंशन उसके ऊपर हम रखेंगे तो प्राप्ति होगी। जैसे देखो आप सभी भट्टी में आए हैं, आए नहीं आए हैं, यहाँ क्यों एक्स्ट्रा अनुभव करते हैं, है? सभी एक्स्ट्रा अनुभव, सब सोचते हैं हाँ, तीन दिन में हम इतनी अच्छी भट्टी की, हम इतने सफल हो गए, हमें इतनी प्राप्ति हो गई, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्या करते, अटेंशन देते हैं, है ना? अटेंशन देते हैं इसलिए प्राप्ति होती, और अगर अटेंशन ठीक है हो रहा है, है? तो होगी, है? तो अलबेलापन अगर जीवन में होगा तो क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं ना अलबेलेपन को खत्म करो, और अलबेलापन क्यों आता है, अलबेलापन आने का कारण भी है कि हम कभी कमाई को नहीं देखते है? अगर कमाई को देखेंगे तो अलबेलापन नहीं आएगा, है ना? जो कमाई को देखता है वो कभी भी ढीला नहीं होगा, और जो कमाई को ना ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जिसको दिख रहा है कमाई है तो क्या करेगा, लग जाएगा, है ना? तो इसीलिए बाबा हमेशा हम सबको यही कहते, बच्चे सदैव अपनी कमाई को ध्यान में रख करके चलो। जो बाबा हम सबको दे रहा है, रोज दे रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं है, एक पल भी ऐसा नहीं है, संगम युग का एक एक सेकंड हमारा वैल्यूबल है, एक एक सेकंड हमारी कमाई का है। अगर ये सेकंड ही अगर ऐसे चले गए तो फिर वापस आएंगे नहीं आएंगे ना? इस समय को अगर हम ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं तो वो वापस नहीं आता है। तो और समय चला गया फिर हम करेंगे, हम पुरुषार्थ करें है? तो नहीं होगा। देखो हमारे बड़ों ने, बाबा ने है? कितने समय के महत्व को देख करके पुरुषार्थ किया है? दादियां हम सबको अनुभव में सुनाती हैं, है? कहते बाबा ने जब हमको कहा था शुरू शुरू में कि बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी, है ना? दादी को, दादियां सुनाती अपना अनुभव कि बाबा ने हमको कहा था कि बच्चे आप अगली दिवाली नहीं देखेंगे, है? तो उस समय क्या बैठ गया, अगली दिवाली नहीं देखेंगे, तो बाबा पुरुषार्थ किया ना, है? है? और अभी हम सोचे चलो संगम युग, अभी बाबा ने तो कहा है 2-4 साल और चलेगा, 10 साल और चलेगा, 20 साल और चलेगा। अगर दादियों ने भी ये सोच लिया होता कितने साल चलेंगे तो पुरुषार्थ होता नहीं होता ना? इसीलिए बाबा कहता ना, देखो हमारी मम्मा का क्या स्लोगन था याद है ना आप सबको, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी की स्मृति से मम्मा ने पुरुषार्थ किया, है। बड़ी दीदी का स्लोगन था अब घर जाना है ना। दीदी को सदैव बुद्धि में क्या रहा, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, तो घर जाने की तैयारी करेंगे ना है। और बड़ी दादी का क्या स्लोगन था, कर्मातीत बनना है ना। तो कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, बस अब जाना है, बाबा आया है लेने के लिए, हमें जाना है। तो जब तक वो धुन सवार नहीं होगी ना, तब तक पुरुषार्थ नहीं होता है। जैसे दादियों ने धुन लगाई है, तो ऐसे हम सबको भी क्या करनी है, धुन लगानी है। और धुन लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कार्य नहीं करते हैं, धुन माना अपने पुरुषार्थ के लिए धुन लगानी है। और बाकी जो सेवा का कार्य बाबा ने दिया है वो कार्य तो करते रहना है, उसको और उसको अलग नहीं करना है, है कि भाई हमें कर्मातीत बनना है, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए, नहीं। दादी बाबा ने कितना किया, दादियों ने कितना किया, अभी भी कर रहे हैं ना। अभी भी देखो दादी जानकी कितनी बीमार है, है, लेकिन दादी को बस मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, सुनाना है, मेरे को सुनाना, बस अंदर में, जैसे कि दादी को अंदर में वो ही संकल्प चलते रहते हैं, मैं कैसे सबको भरपूर करूं, और खुद के लिए भी अपना पुरुषार्थ भी साथ साथ चल रहा है। तो हमें भी अभी क्या करना है, खुद के लिए भी और सेवा के लिए भी। तो जब खुद का हमारा लक्ष्य होता है तो सेवा सहज हो जाती है। है? अभी हम सब क्या करते हैं, सेवा का लक्ष्य रखते हैं लेकिन खुद का नहीं रखते है? तो बैलेंस नहीं होने के कारण फिर क्या होता है, हा? सेवा हो जाती है, मुख की सेवा हो जाती है, लेकिन है? जो अपने चेहरे से, चलन से है? वो नहीं चाहिए। बाबा कहने बैलेंस रखना है, बाबा ने हम सबको हर कार्य का बैलेंस सिखाया। जो बैलेंस जीवन में जानता है वो सदा सफल होता है। आज दुनिया में, संसार में मनुष्य क्यों निसफल जाते हैं, है? उसका कारण क्या होता है, बैलेंस नहीं है, है ना। और बाबा ने हम सबको क्या सिखाया है, बैलेंस सिखाया है। हर बात का बाबा ने, इतनी छोटी छोटी बात का भी बाबा ने हम सबको बैलेंस सिखाया, और हम उस बैलेंस के आधार से कार्य करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो जीवन में अगर हमें सफल होना है तो क्या करना है, बैलेंस रखना है। बाबा हर कर्म का, बोल का, एक्टिविटी का, सोच का, सब बाबा ने हम लोगों को बैलेंस दिया है। उस बैलेंस के आधार से अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो जीवन बहुत क्या चलता है, स्मूथ चलता है। अगर बैलेंस ना हो, गाड़ी में दोनों पहियों में बैलेंस ना हो तो क्या होगा, है, क्या होता है, डगमग होती है, और उसके अंदर बैठने वाला वो भी ऊपर नीचे होता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हमें भी बैलेंस बाबा ने जो दिया है, हमारी जो भी बाबा ने सब्जेक्ट दी है, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, पढ़ाई की, जो भी है, उन सब बातों में जो बैलेंस सीख लेते हैं वो जीवन में सदा सफल हो जाते हैं। बाबा ने सबसे बड़ी कला हम सबको यही सिखाई है, कैसे घर गृहस्थ में रह के बैलेंस में रहो, कैसे सेवा में रहते बैलेंस में रहो। किसी ने एक प्रश्न पूछा है, मेरे को याद आया भी, कि हम ऑफिस में बैठते हैं तो नुमन शाम का समय योग कैसे करें, है? तो भाई ऑफिस का कार्य है, छोड़ के तो नहीं करेंगे ना, है कि भाई मेरा कार्य है उस समय छोड़ दें, अलग करके बैठ जाए, नहीं। कार्य करते हुए भी अगर हमारा टेंशन है, है, स्मृति है कि भाई नुमा शाम है, हम साइलेंस में काम भी करें और साथ साथ योग भी करें, क्योंकि बाबा ने हम सबको कर्म योग सिखाया है। कर्म योग का मतलब है कर्म अलग नहीं, योग अलग नहीं है, दोनों साथ में है, योग भी हो और कर्म। हाँ, हमें समय मिला है तो उस समय हम अपने समय को सफल करें है, और अगर ऐसा समय है जहाँ पर हम एकांत में नहीं बैठ सकते हैं तो कार्य करते हुए भी अगर हमें वो स्मृति है तो क्या होगा, वो भी हमारा योग है। इसके ऊपर मुझे एक दादी का एक मिसाल याद आता है, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थी ना, तो दादी एक बार बहुत बीमार हो गए थे। बीमार हुए तो डॉक्टर ने दादी को आराम के लिए नींद का इंजेक्शन दिया था दिन में, और सबको बोल दिया कि दादी को कोई नहीं उठाएगा, दादी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दादी को इंजेक्शन दिया गया है, और दादी को सुला दिया। फिर दादी सो गई, लेकिन दादी जब ट्रैफिक कंट्रोल होता था जिस समय एकदम बैठ गई, गीत बजा है, क्यों, नींद का इंजेक्शन दिया है, नींद के में है दादी। आप सोचो किसी को नींद का इंजेक्शन दिया जाए तो वो उठेगा, लेकिन इतनी जागृत अवस्था, इतना अटेंशन था है? और अटेंशन था इसीलिए दादी क्या हो जाती थी, 12 बजे उठ गई है? और हम लोग इतना ध्यान, जरा सा भी आवाज नहीं करेंगे दादी जग जाएंगे, लेकिन नहीं, दादी 10:30 बजे भी उठी, दादी 12 बजे भी उठी। ट्रैफिक कंट्रोल वालों को बोल दिया कोई गीत नहीं बजाएगा, लेकिन टाइम पर दादी उठ गए, क्यों, बुद्धि में ये स्मृति थी, अभ्यास था, इसीलिए दादी उठ जाती थी। अभी हम सबका भी प्रैक्टिकल अनुभव है, आज हम सभी अमृत वेले उठते हैं, कईयों का अनुभव होंगे, कोई अलार्म रखते नहीं है, बाबा को कह के सोते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, आंख खुलती है नहीं खुलती है? किसी को उठाना पड़ता है, है? अगर उठाना पड़े वो योगी नहीं है, अगर उठाना पड़े तो वो योगी नहीं, ब्राह्मण नहीं है ना। बाबा को कह के सोते बाबा उठा देता है, जितने बजे भी हम कहेंगे ना बाबा उठाना तो बाबा उठाएगा, आप ये अनुभव कर लेना। आपको कहीं जाना है भले 3:30 बजे आप नहीं रखो, लेकिन उससे पहले भी उठना होगा ना तो भी आप उठ जाते हैं, क्योंकि हम सबको ये अभ्यास पड़ गया है, तो वो अभ्यास हमारा नेचुरल है और वो ही अभ्यास हमें करना है। बाबा कहते हैं ना, अभी ऐसा समय आएगा जो हम अपने पर्सनल योग का समय भी नहीं निकाल पाएंगे। हम कहे नुमा शाम का योग है, आज प्रोग्राम चल रहा है, हम वहां गए हैं तो हम योग कहाँ करेंगे, नहीं कर सकेंगे ना, तो हम वहां बैठे बैठे भी बाबा को याद तो कर सकते ना, क्योंकि हमें बुद्धि से बाबा को याद करना है, तो बाबा की याद तो हर कर्म करते हुए बाबा की याद को सदा साथ रखना है, वो साथी मेरा सदैव साथ है तो उसकी याद मेरे साथ है, साथी को कभी भी अलग नहीं करना, वो ही मेरा कंपनी और वो ही मेरा कंपेनियन। कंपेनियन कौन है, जीवन साथी कभी भूलता है, कितनी भी भुलाने की कोशिश करते हैं भाई है तो पल पल याद रहता है, रहता है नहीं रहता है, जिसको जीवन का साथी बना लेते हैं वो देहधारी साथी भी पल पल याद रहता है, तो ये तो हमारा सच्चा सच्चा जीवन का साथी है, तो सच्चा सच्चा जीवन का साथी तो बाबा सदैव क्या रहेगा, याद रहेगा। अगर याद नहीं रहता है तो साथी नहीं बनाए ना, तो जीवन का साथी बाबा को सदैव बना के रखो और सदैव बाबा को अपना साथी बनाओ और जीवन का साथी, साथ बाबा के रहो और जीवन का साथी बाबा को रखो। बाबा से कभी अलग नहीं होना है और अपने से बाबा को कभी अलग नहीं करना है। ये हमारा विशेष योग है। बाकी योग तो हम सब करते हैं, बाबा ने हमारा योग इतना सहज किया है, इसीलिए बाबा ने कह दिया बच्चे योग शब्द कोई निकाल दो, अभी मेरे को याद करो। तो हम सभी बाबा को याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, और याद की संपूर्ण स्टेज है वही है मैं और मेरा बाबा। दूसरा कोई भी बुद्धि में ना आए, ना कोई बातें याद आए, ना कोई सेवा याद आए, ना कोई याद रहे, बस एक बाबा और मैं। कहा ना बाबा मेरा क्या है, संसार। तो संसार में तो सब आ गया ना, फिर दूसरा संसार कहाँ से आ जाता है, है? भाई दूसरा संसार भी अच्छा लगता है क्या? दूसरा संसार फिर है ही नहीं। बाबा मेरा और मैं बाबा की, यही हमारा लक्ष्य जीवन का है। तो हम बहुत बहुत अपने को आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में बहुत खुशी रहती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं सदैव बाबा को अपने साथ रखती हूँ और मैं सदैव इतनी हल्की रहती हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी परिस्थिति में टेंशन नहीं आता है। कईयों को आता है ना, बहुत सेवा होंगी, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, कभी नहीं आता है। क्यों? सदैव स्मृति में रहता है। क्या स्मृति में? बाबा का वरदान स्मृति में रहता है, बाबा स्मृति में रहता है। देखो बाबा ने हम सबको कितने वरदान दिए, दिए ना सभी को, है देता है ना बाबा वरदान। तो अपने वरदानों को याद करते हो, स्मृति में रखते हो कि बाबा ने मुझे कौन सा वरदान दिया है, है? विजय भाव, तो विजयी है ना, फिर हार कैसे हुई, है? जब विजयी भाव का वरदान है तो हार कैसे हुई, है? तो हम वरदान की स्मृति नहीं रखते तो हार हो जाती है ना, है? और अगर स्मृति दिला दे तो हार नहीं होगी ना। तो बाबा ने हम सबको, हम वरदानी आत्माएं हैं और बाबा हम सबको वो स्मृति दिलाने के लिए आया। और जब हमारी स्मृति हमारे सामने आएगी और स्मृति रहेगी तो कभी भी हम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम विजयी न बने, है? तो हमेशा अपने जो वरदान और सोमान है उनको अगर हम स्मृति में रखते हैं तो कभी भी हम निष्फल नहीं होते। तो मुझे याद है बाबा ने मुझे एक बार वरदान साकार बाबा ने दिया, व्यक्त बाप दादा ने दिया। बाबा ने कहा बच्ची बहुत हल्की हो, बाबा ने कहा निर्संकल्प हो। जब मैं बाबा के पास जाती थी तो बाबा मुझे हमेशा कहता था बच्ची तुम निर्संकल्प हो, है? तो कोई भी बात आती है ना तो मुझे वो बात याद आती है। थोड़ा सा भी एक, मान लो एक मिनट के लिए भी कोई संकल्प चलता है ना तो तुरंत मुझे बाबा की वो याद, वरदान याद आता है, बाबा ने मुझे कौन सा वरदान दिया है। स्मृति आई तो क्या हो गया, हल्के हो गए, शक्ति आ जाती है। स्मृति आने से शक्ति आती। देखो शास्त्रों में भी वो कहानी सुनाते ना, हनुमान था, है? तो हनुमान को क्या हुआ था कि उसकी जो भी शक्तियां थी उसको श्राप मिला तो शक्तियां उसकी सुषुप्त हो गई थी, है? और फिर उसके बाद उसको ये भी कहा गया था कि भाई जब ये शक्तियां हैं, जब जरूरत पड़ेगी और कोई आपको स्मृति दिलाएगा तो वो शक्तियां सब हाजिर हो जाएंगी ना। तो हम सभी भी हनुमान है ना, है? हमें बाबा के, हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो शक्तियां थी वो क्या हो गई, रावण राज में सुषुप्त हो गई, अंदर चली गई। और बाबा ने आकर के अभी हम सबको क्या दिलाई, स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, ये सोमान है, ये वरदान है। बाबा ने सब सुनाया तो अब हमको वो स्मृति आ गई। तो स्मृति आ गई तो वो स्मृति को हम यूज नहीं करते। जैसे हनुमान को स्मृति दिलाई फिर उसको क्या हुआ, यूज किया ना। अगर स्मृति को यूज नहीं किया होता तो फिर शक्तियां क्या हो जाती, वहीं की वहीं खत्म हो जाती। तो जो बाबा ने हम बच्चों को स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृतियों को अगर हम यूज करते हैं तो वो आगे बढ़ती है। और यूज ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बढ़ेंगी नहीं। हाँ, मिल तो गई, खजाने को यूज नहीं करो तो खजाने की वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी ना। कोई इंसान कितना भी धन कमाए है? कमाते हैं ना, बहुत धन कमाते हैं, कमा करके तिजोरी में भर दे है? और लॉक लगा दे, खुशी रहेगी है? रहेगी। और उस तिजोरी में से निकाले, यूज करे तो क्या रहेगी? खुशी रहेंगी। तिजोरी में रखा होगा तो डर रहेगा, कहीं चोर ना आ जाए है, कोई संभाल के, कोई लूट ना ले जाए है। और अगर उसको यूज करेगा तो खुशी भी होगी, खुद भी खुश होगा और दूसरों को भी खुशी दिलाएगा, मेरे पास इतना है, मैं ये यूज कर रहा है। तो यूज करने से खुशी होती है। आज इंसान के पास 1,00,000 रुपया है, अगर रख दिया अलमारी में तो खुशी नहीं आएगी। अगर वो 1,00,000 रुपए से कोई चीज खरीदी और उसको यूज की तो क्या होगा? खुशी होगी ना। तो यूज करने से खुशी होती है। तो जो बाबा ने हम सबको खजाने दिए हैं, सिर्फ बुद्धि में रखना नहीं है, लेकिन उसको समय पर अगर हम उनको यूज करते हैं तो यूज करने से खुशी रहती है। और जितना यूज करेंगे उतना और भी बढ़ेगा। बाबा ने कहा हमारे जो खजाने हैं वो ऐसे खजाने हैं कि भाई यूज करने से खत्म नहीं होंगे लेकिन बढ़ते जाएंगे। ज्ञान का खजाना है, दोगे ज्ञान बढ़ेगा। शक्तियों का खजाना दोगे तो शक्तियां बढ़ेंगी। गुणों का खजाना दोगे तो गुण बढ़ेंगे। जो देंगे वो बढ़ते ही जाएंगे। तो अपने खजानों को क्या करना है? बढ़ाना है तो यूज करना है। और बाबा ने हम सबको यूज करने की विधि भी बता दी है कि बच्चे जो भी शक्तियां हैं, जो भी खजाने हैं, उन सबको अभी यूज करते करते अपने पास बढ़ाते जाओ, और जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही खुशी में रहेंगे। आप सबने लक्ष्मी का चित्र देखा है? देखा है? देखा है ना? लक्ष्मी का चित्र में क्या दिखाते हैं? है? लक्ष्मी के चित्र में हमेशा क्या दिखाते? लक्ष्मी को ऐसे दिखाते, ऐसे दिखाते, उसका हाथ हमेशा कैसे दिखाते? ऐसे दिखाते ना। ऐसे का मतलब क्या है? है? ऐसे का मतलब देते जाना। तो आएगा कहां से? सुना? ऊपर से आ रहा है और जा रहा है आता तो है, बाबा देता है। अगर हमने ऐसे कर लिया तो कितना आएगा? और अगर ऐसे किया, इसीलिए दिखाते हैं ना, पैसों का ढेर लग जाता है, है? तो बाबा ने हम सबको क्या बनाया? लक्ष्मी बनाया है। क्या करना है? बाबा से लेना है, लेना है तो ऐसे करो, इतना किया तो बाबा नहीं देगा, उतना ही आएगा। तो इसीलिए खजानों को क्या करते जाओ? बाबा से लेते जाओ, औरों को बांटते जाओ और खुशी में रहो। जीवन बाबा ने इतना सुंदर हम सबको दिया है, इस सुंदर जीवन को क्या बनाना है? सुंदर बना के रखना है। ओम शांति।
बहुत मीठी मीठी बातें और युक्तियां दीदी जी ने हमें बताई कि कुछ भी हो जाए हम बाबा से नहीं बात कर सकते हैं तो बाबा के फोटो के सामने जाकर के बैठो, क्योंकि ये सिर्फ फोटो नहीं है, उसमें चैतन्यता है। भक्ति में भी अगर कृष्ण जन्म होके तो, और कृष्ण ने सृष्टि पर पार्ट प्ले करते 5,000 वर्ष हुए, तो भी भक्त आत्माएं मूर्ति में वो चैतन्यता महसूस करते हैं। आप सभी ने एक बार साइन के गार्डन में वाशी का बना हुआ बहुत सुंदर ड्रामा देखा था। एक बुढ़ी माता का लल्ला गिर जाता है, उसकी बहू तो मानती नहीं, वो बहुत मानती है, और लल्ला बेचारा उसके हाथ से गिरता है तो बुढ़ी माता बहुत परेशान होती, कहती मेरे लल्ला को जरूर कुछ लगा होगा। बेटे को कहती डॉक्टर को ले आओ। डॉक्टर आते है, डॉक्टर ऐसे ही देख के कहता कुछ नहीं माता, इसमें ये ठीक है। लेकिन फिर भी वो माता, उसकी भावना इतनी होती, और वो लल्ला को डॉक्टर को कहती देखो डॉक्टर, और डॉक्टर उसको स्टेथोस्कोप लगा देते हैं और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। तो वो मूर्ति है मनुष्य की बनी हुई, और यहाँ चैतन्य बाप दादा हर पल हर समय हमारे साथ है। आपने सुना उस दिन संतोष दीदी ने भी, दीदी एक बहुत अच्छा अनुभव बताया, दादा मगनमल थे जो दादा लक्ष्मी सत्संग के हेड थे और वो बाबा के संबंधी थे। तो बाबा तब तक तो 96 इयर्स ओल्ड होके शरीर छोड़ के चले गए थे, तो वो अमृत वेले के समय पर चक्कर लगाने निकलते थे। साइंस सेंटर के सामने ही दादा लक्ष्मी सत्संग था, तो ब्रिजिंद्रा दादी विंडो से देख रहे थे, तो दादी के मन में एक संकल्प आया कि ये मगनमल दादा तो घूम रहे हैं और हमारे बाबा तो चले गए। देखो इतना ही दादी को संकल्प आया, और क्या हुआ, वो संकल्प जो है, जैसे दादी शीलेंद्रा थी, वो गामदेवी में रहते थे, और उसी समय शीलेंद्रा दादी की अचानक बाबा ने रस्सी खींची और शीलेंद्रा दादी को कहा कि बच्ची को फोन करके कहो तुम्हारा बाबा गया नहीं है, तुम्हारे साथ है। तो जैसे ही सुबह सुबह रिंग बजी फोन की, तो संतोष दीदी ने फोन उठाया और फोन लेकर के शीलेंद्रा दादी ने कहा ब्रिजिंद्रा दादी को दो संतोष। दादी को जब फोन दिया तो दादी ने कहा भाई बाबा ने आपके लिए मैसेज दिया, बाबा गया नहीं है, बाबा आपके साथ है। तो फोन रखने के बाद ब्रिजिंद्रा दादी खामोश हो गए, और उस समय संतोष दीदी दादी को देख रहे थे, तो दीदी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया दादी क्या बात है। तो दादी ने फिर संतोष दीदी को ये बात कही कि मैंने दादा मगनमल को देखा तो मेरे मन में एक संकल्प आया और बाबा ने तुरंत उसका मुझे शीलेंद्रा दादी के द्वारा जवाब दिया। बात है भाई बहनों, ये जो दीदी ने क्लास कराई अनुभव की बातें है, ये सिर्फ सुनने की, ऐसा नहीं दीदी ने सुना दिया, ये सच में हम सब भी थोड़ा बहुत अनुभव करते, लेकिन उतनी ही गहराई से हम सभी इस बात को लेंगे। और दीदी आपने जो इतना सुंदर क्लास कराया, हर पल हर घड़ी हम बाबा के साथ रहेंगे, और बाबा तो हमारे साथ सदैव है ही है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको प्रभु प्रेम के रस में डुबो दिया। ओम शांति। बाबा की आत्मा
तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, किस्मत ने है तुझसे I'm gonna be